السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
کیسی ہو؟
السلام علیکم. سب خیریت؟
امی ممانی آئی ہیں، جلدی کرو.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. علیکم
السلام. علیکم. صبح سے داہنی آنکھ پھڑک رہی تھی، اب سمجھ میں آیا کہ یہ تمہارے آنے کی وجہ سے تھی.
تو بالکل آپ نے صحیح سمجھا پھوپھی جان،
شاید دیوار پر کوا بولا ہو.
خدا مغفرت کرے میرے بھائی یوسف کی، پتا نہیں کیوں انہوں نے اپنی ساری میراث سیدھے سیدھے اپنی بیٹیوں کو بانٹ دی. اندر تشریف لائے.
سنو، یہی آنگن میں زیادہ ٹھیک ہے، دیکھو کتنی اچھی جگہ ہے.
جیسے آپ لوگوں کی مرضی. تشریف لائے، تشریف لائیے.
معاف کیجیے گا.
خوش آمدید. دن ڈھلے آپ لوگوں نے آ کر بڑا اچھا کیا
پھوپھی جان.
ہاں بیٹا، یہ کیا ہے؟
ایک معمولی سا تحفہ ہے.
آپ کی مہربانی ہے، لیکن کس خوشی میں؟
پھوپھی جان، ہم آپ سے اجازت لینا ہے تاکہ محمد امیر اور نیلوفر کے بارے میں کچھ باتیں کی جائیں.
اب کیسی بات بھابھی؟
میں نے کتنا سمجھایا کہ ہم لوگ پہلے ساری باتیں طے کر چکے ہیں.
بیبی جان، ایسے نہیں ہوگا، ساری رسمیں پوری پوری ادا ہونی چاہیے،
الف سے لے کر بڑی اے تک. شادی اور رخصتی کی ساری باتیں طے ہو جائیں.
ان آج کل کے نوجوانوں کو کیا کہا جائے؟
یہ لیجیے.
بہت شکریہ.
جیتی بھائی کی زحمت کیوں کی
میری پیاری بیٹی.
جانتی بڑی شریر ہو. یہاں جان.
بہت
شکریہ بیٹی.
اتنا دل چاہ رہا تھا کہ مت پوچھو.
سرد ہونے سے پہلے لے لیجیے، پرانے وقت کی یاد میں.
بہت شکریہ پھوپھی جان.
اب ٹھاٹ سے کہہ سکتی ہو کہ شوہر جورو غلام ہے، باہر بھی نوکر ہے، گھر میں بھی نوکر ہے.
نہیں، اتفاق سے میرے شوہر بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں.
واہ واہ، میرے شوہر. شوہر تو پرانے زمانے میں تھے، شمر کی طرح آتے تھے، شمر کی طرح سوتے تھے، شمر کی طرح بات کرتے تھے.
وہ پرانی بات تھی، اب ان تلوں میں تیل کہاں جلال صاحب.
میرے چچا مرحوم اس نسل کے آخری شخص تھے جو ختم ہو گئی. بیوی اچھی ملی تھی، چچی اب بھی اچھی ہیں. یہ محمد علی اور اس کے بھائیوں کی پھوپھی تھی، لیکن میرے ابا نے کبھی ان سے ٹھیک سے بات نہیں کی.
اچھا جلال، ایک بات بتاؤ، اس خاندان سے تم اتنا چڑتے کی ہو؟ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا برائی کی ہے؟ اتفاق سے یہ تمہارے کام کے ساتھی بن گئے ہیں، کیوں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہو تم؟
کیا کہہ رہی ہو؟ یہ رقیب ہیں، وہ بھی ایسے رقیب جو گلا کاٹے.
دیکھو جلال، الحمدللہ تمہارا کام اچھا چل رہا ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے، بیوی بھی اچھی ہے.
میں نے غلط تھوڑی کہا تھا کہ میرے ابا شمر تھے.
ایسی باتیں مت کرو، خدا ان کی مغفرت کرے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے.
میرے باپ نے پوری زندگی میں ایک بات مجھ سے ڈھنگ سے بات نہیں کی، وہ مجھے انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. جواد سے کبھی کبھار خوش مزاجی کر لیا کرتے تھے، لیکن مجھ سے ہرگز. اس کے برعکس اس آدمی کا باپ محمد علی کے مشورے کے بغیر پانی بھی نہیں پیتا تھا، سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق کرتا تھا. بچہ تھا لیکن اس کے پورے بازار میں واہ واہی مچی ہوئی تھی، بازار میں اس کا اعتبار تھا. اور میرے باپ اگر کوئی کاروباری پیغام کسی کو بھیجواتے تھے تو لوگ کہتے خود ان کو بھیجو، لیکن وہ ایک ایک لفظ پہ معاملہ کرتا تھا، ہر چیک پر خود دستخط کرتا تھا. کوئی ایک دفعہ کہے محمد علی، سینکڑوں لوگ محمد علی کا نام دہرانے لگتے تھے. اسی لیے مجھے بالکل نہیں بھاتا ہے، اب بھی نہیں بھاتا ہے.
ارے چلو اٹھو جلال،
اب ہمت نہیں ہے.
اٹھو اٹھو، سستی نہیں کرو.
میں نے کہہ دیا نا، اب موڈ نہیں ہے. जब भी उस आदमी की बात जबान पे आ जाती है पूरा मुंह तल्ख हो जाता है।
अस्सलामुअलैकुम।
अलैकुम सलाम। अम्मी है तुम्हारी?
अम्मी, उनसे क्या काम है आपको?
है कुछ काम?
जी नहीं, नहीं है।
क्यों गहरों की तरह बात कर रही हो, इतना नाप तोल के बोल रही हो? बोलने में तो कोई पैसा नहीं लगता, मैं शायद तुम्हारा चचाजाद भाई लगता हूँ। खैर जैसे ही वो घर पहुँचे हैं तो उनसे कहना मुझको ज़रूर फ़ोन कर लें।
ठीक है, कह दूँगी।
ठीक है, ऐसे कह रही जैसे हमारे घर का फ़ोन नंबर याद है तुम्हें। दादीहाल से इतनी शायद मोहब्बत है कि सारे टेलीफोन नंबर तुम्हें जबानी याद हैं, हैं? ये लो, कहना मैं रात को इनके फोन का इंतजार।
ठीक है।
बच्चों, अपने आप को भिगोना
जी।
मत।
ठीक है।
बेटा अशरफ, जरा इस सुई में धागा तो डाल।
लाइए बीबी जान। आज हम देखना तो इसमें से नाज़रीन के लिए भी कोई ढंग का कपड़ा निकल पाता है या नहीं।
अगर कपड़ा बचा तो बता दूंगी, मैंने कहा था ना कि आधा मीटर कपड़ा बढ़ा लो।
ओहो, ये दोनों माँ बेटी एक जैसा सूट पहनना चाहती हैं ताकि सबके सामने शान मारें।
हाँ, अब देखना शादी के दिन मैं क्या पहनती हूँ।
देखिए, इस पर यूं फूल काट दूं तो अच्छा लगेगा।
हाँ बेटा, अच्छा लग रहा है, जीत दे रहा हूँ।
अशरफ, चूंकि कपड़ा कम था इसलिए मैं डर रही थी कि कहीं
हमारी जिंदगी दो कपड़ों से नहीं गुजरेगी। मोहतरमा, क्या आपको पता है?
हाँ, एक मंगनी के दिन, एक निकाह के वक्त, और एक रुखसती के मौके पर, और एक वलीमे के दिन।
ओहो,
बस बस, क्या कपड़ों का बाजार लगाना है?
अरे बीबी, आपको तो पता ही है कि हम कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। मामूली आदमी की शादी थोड़ी है, भाईजान की है।
जी हाँ, भाईजान की शादी है, इसलिए हम तो भाई इसी की तारीफ करेंगे।
देखो चीखो नहीं, तुम लोग सारी दुनिया सुन रही और तुम्हारे भाई शादी सादगी से करना चाहते हैं।
उनके बस में है क्या?
लेकिन क्या हम ऐसा होने देंगे?
तो तुम ऐसा करो कि अपने भाई को दूल्हा बनने पर राजी करो। तुम्हारे जरबफ्त के थानों की जिम्मेदारी मेरी हुई।
محمد امیر علیک السلام. یہ کس طوفان سے گزرے ہو کہ جس کے اثرات ابھی پر تم پر آیا ہیں؟
السلام علیکم مرزا صاحب.
وعلیکم السلام
مرزا صاحب. میں کورٹ گیا ہوا تھا.
تم
لوگوں کی بھی کیا کیا پریشانیاں ہیں. ایسی ایسی چیزیں دیکھیں کہ حیران ہو گیا مرزا صاحب. ابھی تک میں وہی سوچ رہا ہوں. نہیں معلوم خواب دیکھ رہا تھا جاگ رہا تھا. ایسی ایسی باتیں اللہ کی پناہ.
ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہم صرف سوچتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہیں. کبھی ہمارے یہ ڈراؤنے خواب دوسرے کے لیے عام ہوتے ہیں. تم تو اپنی میراث کے معاملات کے لیے گئے تھے نا
مرزا صاحب. آپ کو یقین نہیں آیا میں نے وہاں کیا کیا دیکھا ہے.
اس نے بتایا نہیں کہ کیا کام تھا؟
نہیں, لیکن کچھ غصے میں تھے.
یہ سب ایسا ہی ہے. ہم سے ان لوگوں کا رویہ ایسا ہی ہے. اب کیسے اتنے دنوں کے بعد انہیں ہماری یاد آئی؟
آپ کا قصور ہے. عید کے موقع پر کیوں ان کے گھر گئیں آپ؟
میں تمہارے علی ماموں کے کہنے پر گئی تھی. میری پوچھو تو ان کی منحوس شکل کبھی نہ دیکھو. خود ان سے کیا ملا کہ اب ان کے خاندان سے ملنے والا ہو.
کیا آپ اب انہیں فون کریں گی امی جان؟
پتہ نہیں.
میں تو کہتی ہوں مت کریے. میں اب تک بابا مرحوم کی مجلس کو نہیں بھولی ہوں جس میں یہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے تھے اور آپ کا مذاق اڑا رہے تھے.
مرحوم کو ایک قبر دینے پر بھی راضی نہیں ہوئے. کتنا کہا کہ ان کی وصیت تھی کہ ان کے باپ کے قبر کے پاس انہیں دفنا دیا جائے, لیکن انہوں نے میری نہیں سنی اور اس جگہ کو اپنے باپ کے لیے رکھ لیا.
ارے انہیں چھوڑی امی, لفٹ بھی نہ دیجیے. ہمیں اب ان سے کوئی بات نہیں کرنی ہے.
لیکن میرے دل میں اتنی ساری باتیں ہیں کہ اگر میں نے ان کو نہیں کہی تو مجھے خوف ہے کہ یہ دل میں چھپی باتیں میری جان نہ لے لیں.
خدا نہ خواستہ میری امی جان.
اب کچھ دن تک فون نہیں کروں گی, دیکھوں گی کیا ہوتا ہے. بہرحال وہ تمہارے تو رشتے دار ہیں.
ان سے ہماری کوئی رشتے داری نہیں ہے. وہ بابا کے خاندان کے تھے جو اب مرحوم ہو چکے ہیں.
اب جاؤ ایک چاقو لے کر آؤ, اتنے سارے بیگن کاٹنے ہیں.
کیا پکائیں گی؟
کل پرسوں تک بھابھی وغیرہ یہاں آنے والی ہیں. میں نے سوچا بیگن کی حلیم بنا لوں.
محمد علی کو بھی میری ہاتھوں کی بنائی ہوئی حلیم بہت
پسند ہے. وہ کس لیے آنے والے ہیں؟
چلو اب شیطانی نہیں کرو, وہ کرو جو میں نے تمہیں بتایا ہے.
اب مجھے ساری باتیں پتا چل چکی ہیں.
اچھا.
ارے بھائی ہم لوگ بھی کتنے سیدھے سادے ہیں.
وہ کیسے
سیدھے بھی نہیں بلکہ بے وقوف. کوئی بھی کچھ کہے سوچتے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. یہ ٹھیک ہے کہ سب لوگ تین پانچ والے نہیں ہوتے, لیکن عباس اب ایسا بھی نہیں.
اب بات کیا یہ بھی تو منہ سے پھوٹو.
بھائی جان کے اس دن کی باتیں یاد ہیں؟ بہت سے لوگوں کے آنسو بھی فوراً نکل پڑے تھے. پورا پلان تھا. بعض لوگ کیا زبردست ایکٹنگ کرتے ہیں, بالکل ہندوستانی ہیرو کی طرح. سب کا حصہ انصاف کے ساتھ بانٹتا ہے. اور میں نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا اور چند برسوں میں کیا کارنامہ کیا.
خدا تمہاری بولتی بند کرے, اصل بات بتاؤ گے بھی یا نہیں؟
ایک نیا کارخانہ لگانے کے چکر میں ہے. وہ سب باتیں اس جگہ کو بچائے رکھنے کے لیے کی تھی.
یہ سب تو کہاں, اور یہ بھی کہا کہ اس کارخانے کو وسعت دینا چاہتے ہیں.
لیکن اپنے کارخانے کو.
اب ان کا کارخانہ کون سا ہے؟
اسی لیے اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم بیوقوف ہو. انہوں نے یہ ساری باتیں کی کہ کارخانے کو بڑا کریں, پھر کچھ دنوں کے بعد کہیں کہ میرا ہی سرمایہ تھا, میں نے کارخانے کو بڑا کیا, اب میرا ہے. اب زیادہ ہنگامہ نہ کرو, اپنے اپنے میراث لو اور بھاگ جاؤ یہاں سے.
تم نے یا تو گدھے کا دماغ کھایا ہے یا خود ہی گدھے ہو.
اوف اوف.
جاؤ اپنا دل ان سے صاف کرو. بھائی جان کی نیت اگر کچھ اور ہوتی تو وہ صاف کہتے ہیں. وہ تمہاری طرح نہیں کہ اگر کوئی بات کہنی ہو تو 100 دفعہ گھمائے. تمہاری تو فطرت ہی خراب ہے کہ سب کو اپنے جیسا سمجھتے ہو.
ٹھیک ہی کہتے ہوگے, لیکن اگر ایسا ہوا جو میں نے کہا تو.
परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा।
कम से कम इसके बारे में सोच तो लो, सोचना तो आता है।
कैसे हो बेटा?
आपके अनायत है अम्मी।
ये सब कैसा है?
ये क्या है?
अरे यही।
मैं क्या बताऊं अम्मी, आप जानते हैं कि मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं मालूम। जिसका है उसे मुबारक हो।
जिसका है वो चाहती है कि तुम्हारी पसंद भी इसमें शामिल हो।
आपका है?
नहीं, नीलोफर और नरगिस के लिए लिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं बेटा, नरगिस के लिए तो मैंने बहुत कुछ सोचा है। एक जोड़े कपड़े और एक अंगूठी से काम नहीं चलेगा। ये तो सिर्फ मंगनी के लिए है। अब बताओ इसमें से नरगिस का कौन सा है?
ये अच्छा है।
शरीर कहीं के, पता चल गया कि तुम भी इतने अनजान नहीं हो।
चाय लाऊं आपके लिए?
जीती रहो नरगिस बेटी, बस वही एक काफी थी।
और आप मामा?
नहीं बेटी, जीती रहो काफी है।
एक साहब है जो हमारे घर को तोड़कर टावर बनाना चाहते हैं और उसमें से 3-4 फ्लैट हमें देना चाहते हैं। मैंने कोई तवज्जो नहीं की, उन्होंने ज्यादा जिद की लेकिन मैंने टाल दिया। वो अब भी पीछे पड़े हैं। अब समझ में नहीं आता क्या करूं।
नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे पता चला है कि उन्होंने अब किसी वकील को पकड़ा है, चकमा देकर काम निकालना चाहते हैं।
अब क्या करना चाहते हैं?
जलाल तो अब इस चक्कर में है कि किसी तरह भाईजान को नीचा दिखा सके। उसके दिमाग में जरूर कुछ है।
हमारे घर से भाईजान का क्या ताल्लुक?
ताल्लुक है और होना चाहिए।
तो अब हम क्या करें भाईजान?
उसे फोन करो, देखो क्या कहता है।
नहीं मालूम कब इस खानदान से छुटकारा मिलेगा। वो तो 10 साल पहले रुखसत हो गए, लेकिन उनके खानदान का शर अभी तक हमारे सरों पर है।
ये खानदान हम लोगों के बराबर नहीं था, लेकिन किस्मत को क्या किया जाए।
क्या कहूँ, मेरी किस्मत थी। वरना 10 से 6 बड़े लोग शादी के लिए बाबा के पीछे पड़े थे, लेकिन मैं किस खानदान में जाकर फंस गई।
खुदा मगफरत करे, कासिम बेचारा तो खुद अच्छा आदमी था, जलाल के बाप से कहीं बेहतर था, एहतराम तो करता था।
लेकिन ये सब कुछ उसने हमारे खानदान में आकर सीखा। हमारे दरमियान आकर जब उसने देखा कि यहाँ सब उसकी भी इज्जत करते हैं, तो वो भी बदल गया।
खुदा उसकी मगफरत करे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मुर्दों के पीछे ऐसी बातें नहीं की जाती।
अच्छी खासी जहमत में पड़ गई।
ये क्या बात है फूफी जान, जहमत कैसी? खाना तैयार है,
हम भी आ रहे हैं।
चाचा जान अस्सलाम वालेकुम।
अखा इरफान मियाँ, अच्छे बच्चे, जाओ अपने बाबा से को जल्दी से आ जाएं। काजिम चाचा 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। शाबाश बेटे।
अंदर आ जाते।
मेरे भाई मैं कोई पागल हूं जो ऐसे खुली जगह को छोड़कर अंदर काबुक में बैठ जाऊं?
खाना खा चुके हो?
जी हाँ बाकर साहब, अब आपसे तो खाना मिलने की तवक्को तो नहीं।
पिछला खाया पिया नजर नहीं आया।
मोहम्मद बाकर मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा।
अशरफ को क्यों नहीं लाए?
वो नाजनीन को सुला रही थी।
बड़ी अजीब बात है, ये बच्ची बहुत प्यारी हो गई है।
अपने बाप पर जो गई है।
खुदा ना खास्ता।
अच्छा मोहम्मद बाकर, तुमने कभी इन दोनों को मिलाकर देखा है? जबकि ऐसा करना बेवकूफी होगी।
क्या
इस घर और अपने घर में बताइए कैसा लगता है? जैसे एक चटकी हुई चीनी की तश्तरी और एक खूबसूरत सीनी।
तुम मेरे और मेरे अब्बा के घर की बात कर रहे हो?
बाबा का घर? ये घर बहुत पुराने जमाने में तुम्हारे बाबा का था। अब तो उसमें भाईजान इजाजत लेकर अपने कदम जमाए हुए हैं।
जमाए तो जमाए, खानदानी घर जब तक है खानदानी रहेगा।
जी लेकिन अंकरीबी यही घर उनकी मिल्कियत होने वाला है।
अच्छा तो फिर?
भाईजान की बात नहीं सुनी?
क्या कहा है?
कि तमाम मीरास तकसीम होगी और जो जिस घर में उसी के नाम होगा।
होने दो, उसमें मुश्किल क्या है?
कोई मुश्किल नहीं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ भाईजान के लिए।
देखो कासिम, तुम हम में से हो, हम में से, समझे? लेकिन अगर भाईजान के कामों में दखलअंदाजी करने की कोशिश की तो तुम्हारी नाजनीन की कसम हमारी लड़ाई हो जाएगी। इस तरह
मोहम्मद बाकर साहब,
आखिरकार ये तो होना ही था। अगर मोहम्मद अली ने अब तक इंतजार किया है और मिराज की तकसीम को इतना टाला है तो सिर्फ इसलिए कि अपने बाप की वसीयत के मुताबिक सब लोग किसी काबिल होकर पैरों पर खड़े हो जाएं।
मैं तो अभी कहते हूँ इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी।
भाई तहम्मुल की भी हद होती है आपा जान। मोहम्मद अली को तो हमेशा ये डर लगा रहता था कि किसी मरहले पर किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए।
हाँ बेचारा, खुदा उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे।
और देखो ये तुम लोग, क्या तुम ही लोगों की हिमायत में उसने जलाल और उसके पूरे खानदान से लड़ाई मोल नहीं ली? याद है ना वो तुमसे नीलोफर को छीनना चाहते थे, उसके लिए वो कितना लड़ा था,
कितने पैसे खर्च किए मोहम्मद अली ने। लेकिन मजाल है कि एक पाई भी हमसे ली हो।
आज के जमाने में लोग इस कदर अपने कामों में उलझे हुए हैं कि अपने भाई बहन तो रहे एक तरफ, अगर माँ बाप भी जरा हाथ पैर से गए तो उन्हें फौरन ले जाकर बूढ़ों के हॉस्टल में डाल आए।
हाँ यही जलाल की तरह अपने बाप को बूढ़ों के घर में डाल दिया, पलट कर खबर भी ना ली, यहाँ तक कि उनकी मौत की खबर उसको मिली।
जी वो जमाना गुजर गया कि जब लोग अपने कबीले, कौम और खानदान वालों के दुख सुख में शरीक रहते थे, कहीं कोई किसी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ फौरन 10 लोग उसकी मदद को आ जाते थे।
बहुत जहमत दी आपको भाई, माफ कीजिएगा।
नहीं कोई बात नहीं, इत्तेफाक से मेरे लिए तो अच्छा हुआ क्योंकि मुझे रात का खाना खाने की आदत नहीं है, इसी बहाने
बहुत बहुत शुक्रिया मामू जान
का हो गया। कोई बात नहीं बेटा, देखो बतूल उससे बात करो, देखो क्या कहता है,
अगर कोई ढंग की बात करे तब ना,
देखा जाएगा। जाइए आप जाइए,
सब बखैर,
खुदा हाफिज।
खुदा आपको तूलानी उम्र दे।
बहुत शुक्रिया,
बहुत बहुत शुक्रिया।
खुदा हाफिज,
खुदा हाफिज,
शब बखैर।
खैर से हम भाई हैं जनाब। ए जलाल कहाँ हो, कैसे हो इंसान तुम, घटिया इंसान, अपने भाई की इज्जत के साथ तुम खिलवाड़ करते हो। हाँ मेरा चेक गुंटों के हवाले करते हो तुम।
तुम
मत बोलो, तुम्हें साथ चलो, ठीक है आऊंगा, लेकिन मुझे सबको बताने दो, हाबिल और काबिल की कहानी सिर्फ किस्सा नहीं है, हकीकत है।
हाँ भाई,
सब लोग सुन लो, ये मेरा चेक था जो मैंने अपने भाई को काट कर दिया था, वसूल में सिर्फ एक महीना देरी हुई, सिर्फ एक महीने, उसने चेक उठाकर गुंटों के हवाले कर दिया है। भाई नहीं तुम ही लोग कहो, ऐसे भाई होते हैं, अगर ऐसे होते हैं भाई तो लाना तो दुनिया भर के तमाम भाइयों पर।
अरे जवाहर साहब आपसे वहीद है, ये अच्छी बात नहीं है, मना करें ऐसी बात।
लेकिन तुम्हें कोई बात नहीं पता, तुम्हें क्या पता इस सीने में कैसी आग जल रही है।
देखो जरा ठहरो, मैं देखता हूँ क्या हुआ, किससे मामला है।
कोई गैर नहीं है, भाई है, इसीलिए तो ये पूरा वजूद मेरा जल रहा है।
मिर्जा एक जहमत करना, जरा नीचे जाओ और जलाल साहब से कहो कि मुझे एक जरूरी काम है, जरा जल्दी से ऊपर आए। परेशान मत हो, जलाल को आने दो, सब ठीक हो जाएगा।
मोहम्मद अली वो नहीं आएगा, मैं उसे पहचानता हूँ।
क्यों नहीं आएगा, जो भी हो तुम्हारा भाई तो है ना। अरे भाई उसकी रगों में भी तुम्हारा ही खून दौड़ रहा है, तुम दोनों खून एक है।
भाई और भाई में फर्क होता है, आप खुद और अपने भाइयों को न देखिए, आप लोग की बात अलग है, लेकिन ये जलाल, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वातूबिल।
देखो अगर जलाल नहीं भी आया तो हम चलेंगे उसके पास, मैं सब ठीक कर दूंगा।
मैं कहीं नहीं जाऊंगा,
इस आदमी की कोई हैसियत नहीं, ये तो खुद किसी और का आदमी है, ऐसा आदमी का जो इंसान तक नहीं।
देखिए जनाब ये दोनों भाई हैं, हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ हो गई, हम हल कर लेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। हम ताजिरों का एतबार ही हमारी इज्जत का जरिया है, इज्जत गई तो सब कुछ खत्म। अब सारा हौसले से काम लेंगे, यहीं पर हल कर देंगे।
अरे भाई जलाल, कम से कम अपने भाई का तो ख्याल करते।
ऐसे लोगों के साथ यही करना चाहिए था।
तुमने कुछ ज्यादा ही कीचड़ उछाल दिया है। बैंक जाकर जैसे ही देखा कि बैलेंस कम है, चेक पर बैंक से वापसी की मुहर लगवा ली।
मैंने तुमसे कह दिया ना, ये उसी लायक था। तुमको क्या पता कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उसने मेरी पूरी जायदाद हड़प करने की कोशिश की। अगर मैंने फुर्ती ना दिखाई होती तो मुझे दुकान में नौकरी तक का मौका ना देता।
खुदा की पना, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, एक ऐसा वो एक वैसा।
ऐसे और वैसे क्या मतलब?
तुम्हें पता है रुस्तम किसके हाथों मारा गया? भाई के हाथों। उसका एक भाई था जिसका नाम शगात था। एक दावत की रुस्म रुस्तम को भी बुला लिया। रास्ते में उसने एक कुआं खोद रखा था, उसमें तलवार और खंजर भी रखा था और उसे छुपा दिया था। रुस्तम भी अपने घोड़े समेत इसमें गिर गया। उसका अंजाम वही हुआ। आज के भाइयों से तो अल्लाह की बना।
मैंने कहा मेरे भाई, देखो अगर इम्कान नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं खुद कुछ कर लूंगा। तो कहने लगा, ये कैसी बात हुई भाई, मेरी और तुम्हारी कैसी बात? और इस तरह से मेरी कहानी शुरू हुई और मेरे बरसों की कमाई हुई इज्जत उसने यूं ही पामाल कर दी।
बाजार के काम में ये सब होता रहता है भाई, हमें भी प्रॉब्लम हुई है। उसे आने दो, जरा कुछ मोहलत मांग लेंगे, सब हल हो जाएगा, खुदा भरोसा रखो इंशाल्लाह।
मुझे नहीं पता ये इंसान किस पर गया है, रहम तो उसके दिल में है ही नहीं, ना अपने को पहचानता और ना गैर को। अगर सौतेला होता फिर भी कोई बात होती, सोचता कि माँ बाप अलग अलग हैं, खून भी एक नहीं है, इस वजह से ये बात कर रहा है। हम दोनों भाई हैं, एक खून, एक घराने से। अल्लाह अकबर, हम कहाँ जा रहे हैं?
अब इतना परेशान ना हो, क्या हुआ मिर्जा?
नहीं मिला, पता नहीं कहाँ है।
भाग गया होगा, मैं उसे खूब जानता हूँ, खिसक गया होगा ताकि आपसे आंख ना मिलानी पड़े। चलिए जनाब आप।
बैठो भाई, कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो,
कोई फायदा नहीं मोहम्मद अली। अरे भाई, उस भेड़िए की तो तुमसे भी नहीं बनती, वो यहाँ नहीं आने वाला।
वो बहुत पहले की बात है।
हाँ ठीक कहा कि पहले की बात थी, लेकिन वो अभी तक नहीं भूला है। खुद मुझसे सैकड़ों बार कह चुका है कि किसी न किसी दिन वो तुम्हें भी डसेगा, और मैंने सैकड़ों बार उसे समझाने की कोशिश की।
देख लिया ना आपने, मैंने कहा था कि मैं इन सबको पहचानता हूँ।
तुम तो
एक मिनट रुके। जवाद साहब, आप कितने दिनों में पैसों का बंदोबस्त कर सकते हैं?
नहीं मालूम, नहीं मालूम।
बहरहाल कुछ सोचो, किसे बेचा जा सकता है?
घर बेचना पड़ेगा, एक दो दिन तो लगेगा मोहम्मद अली साहब।
एक दो दिन तो कोई बात नहीं।
नहीं, मुझे अभी चाहिए, हमें अभी चाहिए। आप हटिए जना, हटिए, आप इनको लेकर आइए।
अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम।
बैठे रहें आप लोग, बैठे रहें।
क्या हुआ भाईजान?
कुछ नहीं, देखा नहीं?
मैं आपको चाय दूं?
नहीं भाई, चाय नहीं पीऊंगा।
कैसे कैसे भाई मिल जाते हैं।
फिर तुम बोले, अगर तुम ना बोले तो कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें पता है कि हुआ क्या है?
अरे? अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता है?
नहीं।
अच्छा तो फिर?
लेकिन फैसला भी नहीं सुना रहा। शायद एक भाई ने अपने दूसरे भाई का कान काटने की कोशिश की, लेकिन काट नहीं पाया, फंस गया।
तो फिर भाई भाई के रिश्ते का क्या होगा?
उन्हें रोको मत भाईजान, खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है।
क्या
فهمیدم